ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए, किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं कृषि विशेषज्ञ हरबीर सिंह। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं हर्ष रंजन।
केंद्र सरकार देश के किसानों की हालत सुधारने के लिए और उनके वेलफेयर पर ज्यादा से ज्यादा खर्च करने के लिए लगातार तत्पर रही है, ताकि किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके और उनके जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार भी आ सके। और इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों का जीवन और बेहतर बनाने के लिए 14,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कुल लागत वाली 7 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसमें डिजिटल कृषि मिशन बहुत प्रमुख है, साथ ही खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान, पोषण सुरक्षा, कृषि शिक्षा, विपणन प्रबंधन, तमाम तरीके की चीजें हैं इसमें।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी।
डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन, इसमें 2 फाउंडेशनल पिलर्स रहेंगे, एक एग्री स्टैक, दूसरा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। एग्री स्टैक में सारा बेसिक डेटा, किसानों का डेटा, जमीन का डेटा, क्रॉप का डेटा, ये सब रहेगा। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में वाटर की अवेलेबिलिटी, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी, वेदर रिलेटेड डेटा, कई तरह के जो किसानों को फैसले लेने के टाइम में जो इन्फॉर्मेशन और साइंटिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए होती है, वो सारे रहेंगे।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह जी मौजूद हैं। हरवीर जी, आकाशवाणी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
केंद्रीय कैबिनेट ने हमने देखा कि किस तरीके से 14,000 करोड़ रुपए से भी अधिक किसानों के हित के लिए अपने परिव्यय पर खर्च करने की मंजूरी दी है। क्या प्रमुख है इसमें और इसे आप कैसे देखते हैं?
जो सरकार ने अनाउंस की है कल, जो योजनाएं 7 योजनाएं अनाउंस की है और उसका आउटले करीब 14,000 करोड़ का जो है बड़ा आउटले है। इसमें जो कोशिश की गई है कि जो कृषि के तमाम सारे जो पक्ष हैं उनको समेट करके उसके ऊपर काम किया जाए। और इसमें एक बड़ा जो प्रमुख काम है वो टेक्नोलॉजी का उपयोग ज्यादा बढ़ा करके किस तरीके से सूचनाओं को आगे तक पहुंचाया जा सकता है, सटीक सूचनाएं हासिल की जा सकती हैं और उन सूचनाओं के आधार पर किस तरीके से बेहतर फैसले लेकर के कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ किसानों की आय में बेहतरी लाई जा सकती है। क्रॉप साइंस और फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी है
जी
वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है उत्पादन बढ़ाने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, फसलों को सुरक्षित रखने के लिए। और जो हम उत्पादन कर रहे हैं उसमें पोषक तत्व जो है वो कितने हैं, जो एक बड़ा पक्ष आ रहा है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। केवल उत्पादन जरूरी नहीं है, उत्पादन जो जिस भी फसल का हम लोग कर रहे हैं वो कितना पोषण उसके अंदर भेजता है, इसमें करीब 3,989 करोड़ रुपया का प्रावधान है। फिर जो एग्रीकल्चर एजुकेशन को लेकर के देखिए, जो एग्रीकल्चर का हमारा जो कृषि का जो शिक्षा है और रिसर्च है, दुनिया के सबसे बड़े जो नेटवर्क है पब्लिक सेक्टर में उसमें है, जिसे हम लोग इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम बोलते हैं और सुनास भी कहते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर सिस्टम। और हमारे देश भर में जो केंद्रीय स्तर पर जो संस्थान है, जो डायरेक्टरेट है या जो राज्यों के कृषि विश्वविद्यालय है और रिसर्च इंस्टीट्यूशन, उस सबको मिलकर के ये बनता है। और इसके लिए ज्यादा संसाधन उपलब्ध कराना, साथ ही नई जो परिस्थितियां हैं, नई जो एजुकेशन पॉलिसी है या विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसकी तरफ जाने के लिए किस तरह के बदलाव और कदम उठाने की जरूरत है, उसके लिए ये स्कीम हासिल करने के लिए की गई। और सिर्फ फसल उत्पादन सब कुछ नहीं है, फसल के अलावा अगर हम देखें आज के समय में जो हमारे जो डेयरी उत्पाद है, जो देश में दूध का उत्पादन है, उसकी जो ओवरऑल वैल्यूएशन है वो हमारे कुल खाद्यान्न की जो वैल्यू है, जो उसका मूल्य है, उससे ज्यादा हो गया है। तो ऐसे में जो हमारे पशुपालन है उसके लिए काम करना, हमें उत्पादन बढ़ाना वहां पर, और जो हमारा लाइफ स्टॉक है, जो पशुधन है, उसके स्वास्थ्य को लेकर के किस तरीके से जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए वो इस स्कीम में, जो सस्टेनेबल लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन का जो एक स्कीम लेकर के हम आए हैं, उसमें 1702 करोड़ का प्रावधान है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे चीजें समाहित की गई है जो कि जरूरी है, बेहतर ब्रीडिंग के लिए, जेनेटिक रिसोर्समेंट करने के लिए और स्वास्थ्य के लिए। फिर हमारा जो बागवानी का उत्पादन है वो भी जो सामान्य फसलों के उत्पादन से लगभग ज्यादा हो गया है, जो फल और सब्जियां हैं, क्योंकि एक तो स्वास्थ्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो छोटे किसान हैं या जो दुर्गम इलाके पहाड़ी इलाके वहां पर हॉर्टिकल्चर का ज्यादा उत्पादन होता है, तो हॉर्टिकल्चर में बेहतर गुणवत्ता के बीज और पौधे और ये पूरे सिस्टम को किस तरीके से बेहतर किसान की आमदनी में वृद्धि संभव है, उसके लिए ये हॉर्टिकल्चर की बहुत जरूरत थी। हमारा नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है तो पूरा एक फूड प्रोसेसिंग केमिस्ट्री ही उसके लिए काम करती है, तो ये जरूरी था। प्लस जो एक कृषि विज्ञान केंद्र है उसके लिए 1200 करोड़ दिए गए, क्योंकि देश भर में कृषि विज्ञान केंद्रों का एक जाल है और वो एक ऐसा नेटवर्क है जो किसानों के बीच में है, वहां पर प्रशिक्षित और अच्छे साइंटिस्ट हैं, किसानों की जो समस्याएं हैं उनके खेतों के नजदीक कैसे सुलझाई जा सकती है या उनको बेहतर सूचनाएं कैसे मुहैया कराई जा सकती है, उसमें जो कृषि विज्ञान केंद्रों का हमारा जो नेटवर्क है देश में वो काफी अहम भूमिका निभाता है, और इसलिए उसके लिए अगर अतिरिक्त संसाधन दिए गए हैं तो एक बड़ा काम है, क्योंकि उससे उनका इम्प्रूवमेंट होगा। और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, क्योंकि जब हम बात करते हैं कि एग्रीकल्चर, क्लाइमेट और जो हमारे संसाधन है सस्टेनेबिलिटी, जिसे हम टिकाऊ खेती की बात करते हैं, उसके लिए हमारे जो प्राकृतिक संसाधन है उसका बेहतर प्रबंधन जरूरी है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो 7 योजनाएं हैं वो 7 योजनाएं कृषि का जो समग्र जो हमारा ढांचा है उसको एड्रेस करने के लिए, हर जगह काम करने के लिए ये योजनाएं तैयार की गई हैं, इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो बेहतर नतीजे सामने आए।
आपने बात की ये 7 वैसे तो अपने आप में महत्वपूर्ण ये योजनाएं हैं, लेकिन अगर एक तरीके से देखें आप जिस टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, डिजिटल कृषि मिशन, ये बाकी के 6 योजनाओं को भी बहुत जोर शोर से मदद कर सकता है, उनको आगे बढ़ाने में सहयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि आज का जमाना जो है वो टेक्नोलॉजी का है और इसमें सबसे ज्यादा 2,817 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय है जिसमें मंजूरी दी गई है। तो ये डिजिटल कृषि मिशन कैसे काम करेगा, अगर इसे आप समझाएं तो कैसे समझाएंगे कि अभी जो खेती हो रही है या पहले जो खेती किसानी होती थी और डिजिटल कृषि मिशन के आने के बाद क्या फायदा होगा, क्या बदलाव होगा?
टेक्नोलॉजी ने तमाम सारे क्षेत्रों में बड़ी तरक्की की है और उसका उपयोग हो रहा है। कृषि में अभी तक हम जो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका उतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं करते जितना दूसरे क्षेत्रों में हो रहा है, और वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, इस सब का बेनिफिट तमाम सारे क्षेत्रों में मिला है, उससे एफिशिएंसी आई है, उत्पादकता बढ़ी है और बेहतर आय के स्रोत खुले। इसका एग्रीकल्चर पर फोकस करना ये महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि हमारे जो आंकड़े हासिल करने की प्रक्रिया है, जो फसल उत्पादन की प्रक्रिया है, या जो फसलों के अनुमान लगाए जाते हैं, या जो मौसम से संबंधित जो अनुमान लगाए जाते हैं, अभी भी उतने सटीक आंकड़े हमारे पास नहीं होते। लेकिन जब डिजिटली हम ज्यादा काम करने जा रहे हैं इसमें, जैसे कि देखिए एग्री स्टैक जो है ओवरऑल उसके तहत ये है, उसमें आप किसानों के पास कितनी भूमि है, वो कौन सी फसल उगा रहा है, कौन सा वेदर उसके लिए बेहतर है, उसकी जमीन की जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता कैसी है, उसका स्वास्थ्य कैसा है, ये सारी चीजें जब इकट्ठी होंगी, मालिकाना हक कहाँ है, कौन सा खेत किस किसान के पास है, वो डिजिटली एक जगह जब आएगा, जो फार्मर रजिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं उसमें उसका सारा आंकड़ा एक जगह होगा। एक तो ये है कि वो भी अश्योर होगा, उसमें तमाम सारी जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ कैसे लिया जा सकता है, क्योंकि जैसे आधार है उसी तरीके का एक फार्मर का एक आइडेंटिटी, उसके परिवार की भी जानकारी होगी। साथ में इस सिस्टम में हम लोग जो गांव की जमीनें हैं उनका भी मैपिंग होगी, लैंड का पूरा रजिस्ट्री बनेगी और एक फसलों के जो बुआई है उसकी रजिस्ट्री बनेगी। तो ये किसान की सारी जानकारी, गांव की जानकारी और फसल की जानकारी की जो रजिस्ट्री होगी उसके जरिए सारी सूचना एक जगह होगी, और उसका ये फायदा होगा कि एक तो सटीकता आएगी, प्लस ये है कि अगर हमें ये देखना है कि देश में उत्पादन कितना है ये पता लगेगा, देश के तमाम सारे अलग इलाकों में क्लाइमेट जो है या एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन या मिट्टी की उर्वरता कैसी है, कौन सी फसल वहां उगाई जा सकती है, अगर मैपिंग करने की जरूरत पड़ती है क्रॉप मैपिंग की कि कहां पर ज्यादा बेहतर उत्पादन हो सकता है, या फसलों के विविधीकरण की जरूरत पड़ती है तो सारा डाटा हमारे पास होगा। साथ में प्रोडक्टिविटी किस जगह कितनी है, यील्ड कितनी है, और अगर हम नई प्रजातियां लेकर के आ रहे हैं उससे किस तरीके के नतीजे सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत ही बड़ा इम्पैक्टफुल काम होगा। दूसरे, जब ये आंकड़े होंगे तो फैसले लेने की जो व्यवस्था है वो ज्यादा परिपक्व होगी, जिस तरह की कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम जो कहा गया है, ये KESS जो है उसमें ये है कि फैसले, क्योंकि हमारे पास सटीक सूचना होगी तो फैसले लेना आसान होगा। कई बार ये है कि सरकार की योजनाएं हैं, जैसे क्रॉप इंश्योरेंस है, या किसान को कर्ज लेना है तो क्रेडिट किस तरीके से मिल पाएगा, वो सारे आंकड़े एक जगह हो तो ये एक तो प्रोसेस छोटा हो जाएगा, प्लस उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी और जरूरतमंद को उसके फायदे मिलेंगे। मैं तो ये भी कहूँ कि जो उतार चढ़ाव होता है खाद्यान्न हो या फिर कमर्शियल क्रॉप्स हो, उसके बारे में पहले से एक प्राइस डिस्कवरी का मैकेनिज्म भी ज्यादा बेहतर तरीके से मजबूत हो पाएगा। ये सारे जो फायदे इसमें हो पाएंगे।
डिजिटल कृषि मिशन से इतने सारे फायदे होंगे, किसान एक डिसीजन ले सकेगा, सही समय पे सही फैसले लेने की आजादी हो सकेगी और सही सूचना उपलब्ध हो सकेगी, न सिर्फ कृषि के उत्पादन में बल्कि कृषि के विपणन में भी इससे और फसलों में बढ़ोतरी होगी। और अभी देखिए केंद्र जो है वो जिस तरीके से विकसित भारत के लक्ष्य पर काम कर रही है, 2047 में जब स्वतंत्र भारत 100 साल का होगा हम पूरी तरीके से विकसित होंगे और इसीलिए खास तौर पर खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान और पोषण संबंधी सुरक्षा में 3,979 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की गई है, इसे मंजूरी दी गई है और ये पहल जो है वो किसानों को जलवायु लचीलेपन के लिए तैयार करेगी और साल 2047 तक खाद्य सुरक्षा प्रदान करेगी। ये कितना महत्वपूर्ण लग रहा है क्योंकि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कृषि और किसानों का सहयोग भी बेहद आवश्यक है।
असल में देखिए, एक तो दुनिया में जो बदलाव हो रहे हैं, खासतौर से जो मौसम को लेकर के, जलवायु को लेकर के, उसने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है पूरी दुनिया के सामने। और कृषि क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर जलवायु और प्रकृति के सबसे ज्यादा मायने हैं, फसलों का जो जीवन है उसके लिए एक जो स्पेसिफिक तरीके का तापमान, ओवरऑल जलवायु, मिट्टी, ये सारी जरूरत पड़ती है और अगर उसमें भारी उतार चढ़ाव होते हैं तो उसके लिए हमने रणनीति बनाई, अब जिसे हम लोग कहते हैं कि क्लाइमेट रिजिलियंट क्रॉप्स जो है या जलवायु के अनुकूल फसलें, अगर अचानक तापमान में कमी होती है या ज्यादा होता है तो उसको उस तरीके के प्रजातियां विकसित की जा सके जो उस उतार चढ़ाव को झेल पाए। तो हमारे साइंटिस्ट लगातार इस पर काम कर रहे हैं और इसके लिए टेक्नोलॉजी का भी बहुत एडवांस हो गया है, जैसे कि जो प्लांट जेनेटिक साइंस जो है वो काफी आगे चली गई है। परंपरागत जो ब्रीडिंग सिस्टम है उससे आगे हम लोग जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी करते हैं, साथ में जीन एडिटिंग की टेक्नोलॉजी आ गई और जीन एडिटिंग को गवर्नमेंट ने अलाउ भी किया हुआ है। ये जीएम से अलग होता है, ये मैं स्पष्ट कर दूं यहाँ पर,
मतलब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड नहीं है।
ये जेनेटिकली मॉडिफाइड की प्रक्रिया में हमें बाहर से फसल में जीन को लाना पड़ता है
जी,
जबकि जीन एडिटिंग की प्रक्रिया उसी प्रजाति के, उसी पौधे के, उसी फैमिली के जीन्स को आप थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि नई प्रजाति विकसित करने की जो अवधि है वो काफी घट जाए और इसके ऊपर काम होगा। तो ये जो जेनेटिक रिसोर्स मैनेजमेंट जो है और जेनेटिक इम्प्रूवमेंट, अब जेनेटिक इम्प्रूवमेंट आप कर पाएंगे साइंस के माध्यम से, तो उसके लिए आपको रिसोर्स चाहिए। क्योंकि अभी देखिए कि हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ऐसी फसलें आ रही है जो फोर्टिफाइड क्रॉप है। फोर्टिफाइड का मतलब यह है कि इस तरीके के प्राकृतिक रूप से हमने ऐसी प्रजातियां विकसित की हैं जिसमें आयरन ज्यादा है, जिसमें आपका जिंक ज्यादा है, तो यह जो स्वास्थ्य से संबंधित जो विटामिन या मिनरल है उनकी मात्रा को आप फसल के अंदर बढ़ा सकते हैं। आपको बाहर से फोर्टिफिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ये न्यूट्रिशियल सिक्योरिटी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उत्पादन तो अपनी जगह बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी सुरक्षा बहुत जरूरी है, खाद्य सुरक्षा, लेकिन पोषण सुरक्षा भी उतनी जरूरी है।
जी हरवीर सिंह जी, आकाशवाणी से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे किसानों के जीवन और आजीविका में सुधार के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे कृषि विशेषज्ञ हरवीर सिंह, कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे हर्ष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।